Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे और साथ ही प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमरीश।
और अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग।
Thank you, Amrish. Yes, let's get going, friends. Well, benchmark equity indices snap 6-day winning streak. Sensex falls around 700 points. Nifty drops more than 200 points. Major Asian stock markets end with gains. And China's ambassador to India, Xu Feihong, expresses hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to SEO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties.
बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में 6 दिन की बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरा, निफ्टी में 200 अंक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए और भारत में चीन के राजदूत शु फेयोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ शिखर सम्मेलन में भागीदारी से भारत चीन द्विपक्षीय संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। और आज की पहली खबर, देश के दोनों ही शेयर बाजारों में सप्ताह के अंतिम दिन 0.85% की गिरावट दर्ज की गई और इसी के साथ 6 दिन से चला आ रहा तेजी का दौर थम गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 694 अंक की गिरावट के साथ 81,307 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 214 अंक गिरकर 24,870 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट का दौर दिखाई दिया। मिड कैप सूचकांक 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% गिरा।
Benchmark domestic equity indices ended the week's last trading session with losses of 0.85% each, snapping their 6-day winning streak. The Sensex fell 694 points to close at 81,307. Similarly, Nifty lost 214 points to settle at 24,870. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended in negative territory. The mid-cap index dipped over 0.2% and the small-cap index closed over 0.3% down.
और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 में गिरावट देखी गई। गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में एशिया पेंट्स का शेयर 2.4% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2% और ITC का शेयर 1.8% से अधिक गिरा।
All right, before we go on any further, let's listen to our Honorable Prime Minister who is right now in West Bengal inaugurating projects worth 5,200 crore rupees. Let's listen in.
उनकी जमीन हड़पी जा रही है, देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा।
और चलते हैं खबर के विस्तार की ओर। जैसा कि हम बात कर रहे थे देश के शेयर बाजारों का, तो बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 0.8%, मारुति का शेयर 0.6% से अधिक और सन फार्मा तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर 0.2% तक बढ़ा।
इन सेक्टोरल इंडेक्सेस एट द बीएससी 18 आउट ऑफ 21 सेक्टर्स एंडेड डाउन। अमंग टॉप लैगर्ड्स मेटल लॉस्ट नियरली 1.3%, कमोडिटीज ड्रॉप्ड अराउंड 1.1%, बैंकेक्स एज वेल एज एफएमसीजी बोथ डिप्ड अराउंड ओवर 1% ईच। इन टॉप गेनर्स टेली कम्युनिकेशन एडेड 0.7%, हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड्स एंडेड अराउंड 0.1% अप ईच।
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज रुपया 26 पैसे गिरकर 87.52 रुपये पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 98.75 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, जैसा हमने शेयर बाजार का हाल देखा, अचानक ही काफी बड़ी गिरावट दिखाई दी, जबकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि मोटे तौर पर कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दिखाई दे रहा था। तो आपके हिसाब से आज अचानक ऐसे क्या फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से ये गिरावट दिखाई दी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बढ़ते कदम स्टॉक मार्केट्स में चले रहे पिछले 6-7 दिनों से उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी, तो ज़्यादातर इसका जो इसका वजह एक बहुत बड़ा है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका के ऊपर सबकी नज़र इस वक्त टिकी हुई है, वहाँ जैक्सन होल वायोमिंग में वो फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं जेरोम पावल, उनका एक उनकी एक जो स्पीच है उसका इंतज़ार है, क्योंकि ये स्पीच नॉर्मली उसमें फेडरल रिजर्व के जो चीफ होते हैं वो थोड़ी इंडिकेशन दे देते हैं कि इंटरेस्ट की उनकी अगली जो सितंबर की बैठक में वो क्या करने जा रहे हैं। तो इस वक्त उम्मीद बहुत लगाई जा रही है कि ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, और अभी तक तो ये आशा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स थोड़ा सा कम करेंगे ब्याज दर को, लेकिन इसका कुछ अभी मालूम नहीं, क्योंकि जो जॉबलेसनेस रेट है उसका भी उसकी भी चिंता है अमेरिका में, उसकी भी जो डेटा है वो ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन तो खैर ठीक चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका इसके बारे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जेरोम पावल जो फेड के चीफ हैं इसके बारे में ज़रूर इसका कुछ हिंट्स दे देंगे अपनी ये स्पीच में। तो ये इसके बारे में जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि हर साल ये स्पीच होती है, ये बहुत इसको बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है कि भाई जैक्सन होल की जो स्पीच है सब उसका इंतज़ार करते हैं, तो इस वक्त मैं समझती हूँ स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस है। तो तीसरी बात तो जो जिसके बारे में शायद आपने आप रोज बात कर रहे होंगे मार्केट मंत्र में, वो है टैरिफ्स। तो टैरिफ्स के बारे में जो 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 नर्वसनेस है, जो सोच है, जो कंसर्न्स हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो भी इसमें
छाई हुई है।
जो अगस्त 27 से अगर 50% टैरिफ लग जाएगी अमेरिका से, तो फिर तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी
जब तक
पड़ेगा,
मतलब फाइनल नहीं होगा, तब तक थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी,
बिल्कुल वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में।
व्हेन वी लुक एट द डोमेस्टिक मार्केट्स सुषमा, is there any effect of the fact that the government is now trying to simplify GST structure, a slab structure of 5% and 18%, and probably a special 40% to levy for sin goods, as they say, paving way for next generation reforms in the country's 8-year-old indirect tax regime? Second point, do we see that there is a good rural demand, and we also have a very buoyant services industry? Are these also a contributing factor to the fact that the Sensex has gone up slightly, apart from the international factors?
No, I think GST, of course, today the stock market has fallen, but in the last few days, definitely the upswing partially has been due to the fact that you are going to have reforms in GST.
Yes.
The reforms in GST, the ones that they are talking about, will bring down prices, obviously, of a wide range of goods. Mm-hmm. So, you know, reduce inflationary pressures on the economy. And definitely, it's a feel-good factor for the people in general. So that must have been one of the factors that had led to the bullish trends.
Six-day winning streak, as we are calling it.
And secondly, as you rightly pointed out, rural demand is surging. Urban consumption is not rising as quickly as rural demand, but it's certainly a positive that rural demand has been going up.
सुषमा जी, जैसा हम बात कर रहे थे और आपने भी अभी जिक्र किया आर्थिक सुधारों का, और अगर हम देखें कि भारत सरकार किस तरह से इस बारे में काफी आगे की सोच रही है, जो अभी दो GOM भी बनाए गए हैं, तो इस सब का क्या इम्पैक्ट आपको अर्थव्यवस्था पर, खासतौर से शेयर बाजार पर दिखाई देता है?
देखिए, वो आपने GOM की बात की, वो GST काउंसिल का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ऑन रेट रैशनलाइजेशन, और उसने भी इसके ऊपर अपनी मंजूरी दे दी है. पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल्स देने पड़ते हैं, वो अब GST काउंसिल जिसके जो नुमाइंदे हैं वो हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें. तो GST काउंसिल ने ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है. वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा, हाँ, ये जो आपके प्रपोजल्स हैं इनसे हम सहमत हैं, और ये फिर अब सबसे बड़ी चीज़ ये GST काउंसिल के पास आएंगे. तो इसका ज़रूर असर स्टॉक मार्केट के ऊपर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे, और दूसरी बात, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इससे जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है बहुत इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी हैरेसमेंट हो रही थी. छोटे जो दुकानदार हैं, छोटी बिजनेसेस हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आ रही थी कि ये इतने आपने स्लैब्स बनाए हैं. खैर, शुरुआत में GST को जो एक लेवी, एक टैक्स होना था, उसके चार रेट्स हमने बनाए दिए. ऊपर से हमने चार रेट्स और चार टैक्सेस हैं, क्योंकि एक इंटरस्टेट टैक्स है, एक और बाकी एक इंट्रास्टेट जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट और सेंट्रल के लिए है. तो ये एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो ये जो रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उससे उद्योग को और छोटे दुकानदार जो है, रिटेल सेक्टर, उनको काफी रिलीफ मिलेगा कि भाई ये कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी.
There's also talk of GST on insurance to be taken away. It's about 18% now. That might free up disposable income for some people. Do you see it happening? What is your view on that?
Well, I think the government is keen for this to happen, that, you know, you bring it down, because insurance is something that the government wants people to take. So if you levy a very high GST tax on it, then it's a disincentive. So the idea is to reduce. So now that they are reducing the rate, reducing the number of slabs, and the 28% slab is going completely. So you will have a situation in which these kind of services should become more important, more attractive.
जी, लेकिन सुषमा जी, जैसा कि इंश्योरेंस में कम करने की बात है GST, तो दोनों ही तरह के प्रस्ताव हैं कि उसको 5% पे ले आए या पूरी तरह खत्म कर दें. तो आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा फायदेमंद होगा उपभोक्ताओं की दृष्टि से?
देखिए, उपभोक्ताओं की दृष्टि से तो खत्म ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो रखेंगे तो मेरे ख्याल लोएस्ट लेवल पे ही रखना चाहिए. और बात यह है कि ये कोई भी कर जो है हटाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि GST काउंसिल में सारी स्टेट्स ये देख रही हैं कि हमारी जो रेवेन्यू है वो कम ना हो. तो कॉम्पेंसेटरी सेस भी अभी एक लगा हुआ है. बाय द वे, हमने चार टैक्स की बात की, और पांचवा ये है कॉम्पेंसेटरी सेस. ये कॉम्पेंसेटरी सेस भी अब इस जो नए प्लान में अगले साल खत्म हो जाएगा. तो वो स्टेट्स कहती हैं कि हमें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, जो हमारे टैक्सेस हैं वो आपने ले लिए और हमको सिर्फ GST के थ्रू पैसा मिल रहा है. लेकिन ये जो स्टेट्स की जो इस पहले जो कंसर्न्स थी कि भाई कंपेंसेशन अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज के लिए, वो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि GST कलेक्शंस इतने बढ़ गए हैं. तो GST कलेक्शंस बढ़ते गए और मेरे ख्याल में ये और भी बढ़ता जाएगा. और इसमें हम बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कहूंगी कि दो बड़े बड़ी चीजें हैं जो जीएसटी में आनी चाहिए, एक है अल्कोहल और दूसरा है तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये भी आने चाहिए क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी चीजें सिस्टम से बाहर होती हैं तो पूरा सिस्टम मेरे ख्याल अपने सीमलेस तरीके से नहीं चलता।
लेकिन जैसा आपने खुद ही जिक्र किया ना कि वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो टसल है, खासतौर से जो रेवेन्यू लॉस की
बिल्कुल समस्या बिल्कुल है। बिल्कुल
अमरीश जस्ट टॉक्ड अबाउट द रुपी, सुषमा do you see how do you see the weakening rupee vis-a-vis a strong dollar? Also, do you think that there is a word which is buzzword is de-dollarization? Do you see that happening, considering the fact that BRICS is now trying to have its own currency, and how do you see that going? And President Trump clearly doesn't want that happening.
I think, of course, now there's a lot of talk of de-dollarization because Trump has become very aggressive. Now, but the government, the Indian government had made it very clear about a year ago that they were not in favor of de-dollarization. Mm-hmm. And I think broadly that position still remains because it's very difficult to replace the dollar as a reserve currency. Do we really want the yuan in that place? No, we don't really want the yuan. But what is being done, and it is being promoted by India very aggressively, is that we're trying to have rupee trade with many countries. With the Russia, we have had a long-standing system of rupee trade, and now we are trying to introduce that with other countries, like Malaysia, with UAE. We have some agreements in place now.
Yes.
So, but that does not become de-dollarization. That only talks about the bilateral trade between these countries, which, and also with some African countries, which apparently don't have enough dollars, and they find it easier to do trade in their own currency and in our currency. It makes their life easier. So there is an expansion in that area.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.4% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में गिरावट 0.9% से अधिक की रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 0.9% बढ़ा। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 0.5% की रही। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई लगभग स्थिर रहा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बना रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.2% से अधिक की तेजी दिखाई दी। लंदन का फुटसी और जर्मनी का डेक्स दोनों में ही कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया। सुषमा जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो आज एशिया में तो मोटे तौर पर बढ़त का रुख रहा ही, यूरोप में भी रहा, जबकि कल इससे थोड़ा सा अलग स्थिति थी, तो आप खासतौर से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको एट्रीब्यूट करती हैं इस आज की स्थिति के लिए?
देखिए, मेरे ख्याल में ये जो अभी जो बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन और यूरोपियन लीडर्स में, जिसमें थोड़ी सी आशा बनी हुई है कि शायद रशिया और यूक्रेन वॉर वो हो सकता है कुछ सीज फायर आ जाए। सीज फायर तो खैर नहीं रशिया ने बना कर दिया, लेकिन कुछ पीस अग्रीमेंट की तरफ कुछ बातचीत हो रही है, हो सकता है ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में कुछ बायलैटरल समिट हो जाए। लेकिन अभी अभी खैर पीस तो जो है, शांति अभी दूर है, लेकिन सिर्फ ये बातचीत ही बहुत बड़ी
पॉजिटिव इंडिकेशंस
हैं। पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, सो इसी से मेरे ख्याल ये जो है स्टॉक मार्केट्स थोड़ी सी बुलिश हो गई हैं।
Let's take a look at the U.S. markets. U.S. stocks ended in negative territory on Thursday. The S&P 500 index fell 0.4%. Nasdaq Composite and Dow Jones Industrial Average indices both lost over 0.3% each. Meanwhile, the number of Americans filing new applications for jobless benefits rose by 11,000 to 2,30,000. 35,000 last week, according to data from the U.S. Department of Labor. However, number of people collecting unemployment relief in the prior week ending on 9th of August also climbed to the highest level in nearly 4 years. Now, all eyes are on Federal Reserve Chairman Jerome Powell's 8th Jackson Hole speech later today.
And Lalima, isi se judi hui ek aur khabar. S&P Global Ratings ne aaj apni report mein kaha hai ki America dwara 50% टैरिफ वृद्धि का व्यापक आर्थिक प्रभाव भारत के विशाल घरेलू बाजार के कारण कम हो जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि टैरिफ वृद्धि का भारतीय कंपनियों पर असमान प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कपड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्र पर इसका मध्यम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
All right, still on international, look at the international markets somewhat and our connection with them. Well, Chinese Ambassador to India, Xu Feihong, has said that India-China relations have continued to improve and develop since the meeting between the two leaders of the leaders of both countries in Kazan last year. Addressing a dialogue on SCO Summit 2025 in New Delhi, Mr. Feihong said exchanges and cooperation between the two countries have gradually resumed across various fields, resulting in a series of positive outcomes. He expressed hope that Prime Minister Modi's visit to the SCO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties.
Two sides have gradually resumed in various fields and at all levels, with a series of positive results achieved. In the first half of this year, bilateral trade reached $74.3 billion, with a year-on-year increase of 10.2%.
So Sushma, China now warming up to India. China also has made huge investment in Pakistan, as in many other parts of the world, which sometimes we see in a different light.
Yes.
Which way is it going? Has the geopolitical situation become too complex? It seems like there is no black and white and there are a lot of grays around.
Oh, yes, absolutely. You're very right. It's more gray all around. The black and white has disappeared. And yes, of course, China is warming up to India, but India is also warming up to China. Very significant steps taken recently at the meeting with the when the foreign minister, Chinese Foreign Minister Wang Yi, came here.
Mm-hmm.
And he was even given an audience with Prime Minister Narendra Modi. The most unusual. But what is more important is that a lot of bilateral issues were taken up. Number one, the delays in import of rare earth magnets, of tunnel boring machines and fertilizers was cleared. Direct flights, air flights are now going to be resumed. Business visas, which were given only to technical personnel, are now going to be given to non-technical personnel from China, and this had been stopped. So all this is taking place after a period of about 5 years after the Galwan clash.
Mm-hmm.
So I think it's, of course, a very positive thing, because the fact is that the bilateral trade and the economic cooperation, economic ties between the two countries are very extensive.
और चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से निगरानी कैमरा, ऊर्जा मीटर, माइक्रो प्रोसेसर आईपी और नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी चिप और सिस्टम ऑन चिप का विकास किया जाएगा।
ऑलराइट, द इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज बीन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट आफ्टर इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट। द एक्ट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ, रिप्लेसिंग ओवर 6-decade-old Income Tax Act of 1961. The new law will come into force from the 1st of April 2026. The Income Tax Department, in a social media post, said that this landmark reform ushers in a simpler, transparent, and compliance-friendly direct tax regime. The Act includes structural simplifications under which the number of sections have been slashed from 819 to 536 and chapters from 47 to 23, paired with the introduction of tables and formulas for clarity. The new Act introduces the concept of a tax year, replacing the financial year and assessment year to reduce confusion. So I think one more step in ease of living, right, Sushma?
Yes, it's the ease of living and ease of doing business. Mm. And both things, actually, because ease of living for the ordinary man who wants to file an income tax return, and also for business and industry. Simplification is absolutely required, because our laws and regulations tend to be extremely complex.
Yes, already about more than 1,400 laws have been eliminated.
Have been eliminated, and more are being got rid of.
خاص طور سے جب ہم آئے کر کی بات کرتے ہیں جو سامانی ویکتی ہے اس کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے.
بالکل.
جتنا سرل ہوگا سمپل ہوگا اتنی آسانی ہوگی لوگوں کو.
اور آج کل لوگ اپنے آپ آن لائن یہ انکم ٹیکس اپنا جو فارم ہے سبمٹ کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کم کے پاس کم جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو جہاں بھی کمپلیکسٹی ہے ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. تو امید یہ ہے کہ نیا یہ جو ایکٹ ہے اس سے اور بھی سمپلیفیکیشن ہو گیا ہوگا.
رائٹ. ویل, انڈیاز فورن ایکسچینج ریزروز روز اراؤنڈ $1.5 billion, ریچنگ $695.1 billion ان دا ویک اینڈنگ 15th of August.
اور
And crude oil prices rose marginally today. Brent crude was trading flat at $67.67 per barrel, and WTI crude was trading over 0.1% up at $63.59 per barrel when reports last came in. And in gold and silver, well, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.2% down at 99,420 rupees per 10 grams, while silver was also trading over 0.3% down at 1,13,860 rupees per kilogram a short while ago.
اور ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج میں سماچار تیار کیے جانے تک اکتوبر میں آپورت کیے جانے والے سونے کا مولی 0.2% کم ہو کر 99,220 روپے پرتی 10 گرام پر چل رہا تھا. ستمبر میں آپورت کی جانے والی چاندی 0.3% گھٹ کر 1,13,367 روپے پرتی کلو گرام پر چل رہی تھی. سشما جی, آپ کوئی سنکشپت ٹپنی کرنا چاہیں گے سونے کے رخ کے بارے میں؟ حالانکہ یہی اچھی بات ہے کہ ابھی وہ 1,00,000 سے تھوڑا سا نیچے ہے.
اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں, سونا از اے سیف ہیون ایسٹ اور ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے.
رائٹ.
اور چلتے ہیں کاریکرم کی سماپتی کی اور. سشما جی, اس کاریکرم میں بھاگ لینے اور پرمکھ خبروں پر چرچا کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark equity indices snap 6-day winning streak. Sensex falls around 700 points. Nifty drops more than 200 points. Major Asian stock markets end with gains. And China's ambassador to India, Xu Feihong, expresses hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to SCO summit will give fresh impetus to Indo-China bilateral ties. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So it's goodbye from all of us. Namaskar.